ಭವಬೀಜಾಂಕುರ್ಜನನಾರಾಗಾಧ್ಯಾಶಯಮುಪಾಗತಾಯಶ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾ ವಿಷ್ಣುರ್ವಾ ಹರೋದಿನೋ ವಾ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಹರೋದಿನೋ ವಾ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಜೋ ವಿದ್ಯಾದಿ ಸಾಗರ ಸುಧೀ ಜೋ ವಿದ್ಯಾದಿ ಸಾಗರ ಸುಧೀ ಗುರು ಹೇ ನಿತೇಸಿ ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಮೇ ನಿರತ ನಿತ್ಯ ಹಿತೋಪದೇಶಿ ವೆ ಪಾಪ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು ಮೇ ಜಲ ಹೇ ಸಯಾನೆ ಸತತ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಪಾನೆ ಪೂಜೆ ಸತತ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಬೋಲೆ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ದಸ ಲಕ್ಷಣ ಧರ್ಮ ಕೀ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ ವಿದ್ಯಾ ಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ये पर्यूषण शुरू हुआ तब से और कुछ ना भी हुआ हो पर इतना तो जरूर हुआ है कि सुबह का सूरज अब उदित होते हुए दिखाई देने लगा अगर ये पर्यूषण ना आए तो लगता है सारी जिंदगी हम सूर्योदय भी ना देख पाए चलो अच्छा इतना ही बहुत है कि सुबह का सूरज अब इस पर्यूषण की वजह से उगते हुए हम देख लें हम ये मान के चल रहे हैं कि जब से ये पर्यूषण शुरू हुआ है तब से हम जाग गए तब से हमने सुबह जरा जल्दी जागना सीख लिया श्रद्धा की आंख हमारी खुल गई है श्रद्धा का सूरज उग गया हम ये भी मानते हैं जितनी तकलीफ सोए हुए लोगों की है मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा तकलीफ जागे हुए लोगों को होती आप बड़े मुश्किल में पड़ेंगे सोए हुए आदमी की ज्यादा जिम्मेदारी नहीं रहती जागे हुए आदमी की ज्यादा जिम्मेदारी होती अब जग गए हैं तो जिम्मेदारी और आ गई अब तो बड़ी घबराहट और हो जाती है कि ये सब तो हमने सोचे ही नहीं था कि ये भी हो सकता है हम तो अभी सोने के महल में सोए थे सपना देख रहे थे कि सोने के महल में सोए हुए हैं हीरे जवाहरात उसमें पड़े हुए हैं जगह जगह बड़ी अच्छी नींद लगी हुई थी और जब जागे तो मालूम पड़ा कि अपने टूटे फूटे घर की टूटी फूटी खाट पर सोए हैं अब बर्दाश्त नहीं होता ये वो जो सोने का महल कोई ज्यादा ठीक था ये वाली टूटी हुई खाट और ये टूटा चूटा हुआ छप्पर ये बर्दाश्त नहीं होता जागे हुए आदमी के साथ इतनी फिर बेचैनी होने लगती है और मन कहता है कि वो सपने वाला सोने का महल ज्यादा अच्छा था ये तो इसमें तो जिया ही नहीं जाता ऐसा ना हो भैया कि सुबह जल्दी उठने लगे थे 10 दिन के बाद या आज या कल या इसी क्षण ऐसा ना हो कि मन कहे कि फिर से सो जाओ वही सपना ठीक था ये जाग करके तो कुछ बर्दाश्त नहीं होता ये सब तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा जागने के बाद मालूम पड़ता है कि हम कैसे कैसे हैं किस किस भुलावे में हम थे ये तो जागने के बाद मालूम होता जब सपना टूटता है तब मालूम पड़ता है कि हम सपने में थे हम नींद और बड़ा पुराना संस्कार है हमारा सोने का आज का तो है नहीं और संस्कार के साथ आदत के साथ तो मुश्किल ये होती है आदत बड़ी मजेदार होती है कोई भी आदत हो, बड़ी मजे की आदत होती जिसको किए बिना चैन नहीं पड़ता और जिसको करने के बाद चैन नहीं पड़ता। जिसको करो तो चैन नहीं, जिसको नहीं करो तो चैन नहीं। अभी तक सोए थे तो बेचैनी थी और अब जाग गए हैं तो बेचैनी हो गई है। तो ये आदत तो बहुत पुरानी है, मन कई बार कहेगा कि हम फिर से एक बार उसी सपने के संसार में लौट जाएं। 10 दिन तक सब्जी नहीं खाई थी, 11वें दिन भागे भागे फिर से बाजार पहुंच जाएं। आज तो मन पसंद सब्जी खरीद लाएं, कहेगा मन, कहेगा मन। और 3 दिन पहले मन ने यह भी कहा था कि इस शर्त पे छोड़ रहा हूं ये सब्जी कि रोज हलवा और पूरी बनेंगी। ये मन बहुत बेईमान है, ध्यान रखना। ये कितनी चालबाजी करता है हमारे साथ, बस यही हमें समझ, और ज्यादा कुछ नहीं समझ। दूसरे की मन की चालबाजी नहीं समझना, आज तो अपने मन की इन सब चालबाजियों को समझ जाना है। अभी तो सिर्फ हम जागे हैं, अभी तो सिर्फ हमने तैयारी शुरू की है घर वापस लौटने की, अभी तो हमने क्रोध से वापसी की है, अभी तो जरा सा अहंकार टूटा है, सारा रास्ता पड़ा है, बड़ी जिम्मेदारी, ध्यान रखना, बहुत सारे मोड़ हैं, मन किसी भी चौराहे पे आकर के भटकने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। इतने घुमावदार रास्ते पर घर से वापस पहुंचना है, अभी तो इस दुखी जहां में मौत का ही दौर है, अभी तो इस दुखी जहां में मौत का ही दौर है, अभी तो जिसको जिंदगी कहें वो चीज और, अभी तो जिसको जिंदगी कहें वो चीज और है, अभी तो इस दुखी जहां में मौत का ही दौर है। ये जिंदगी क्या जिंदगी है जिसमें कि मरना लगा हुआ है, अभी इस धोखे में नहीं रहना कि जिंदगी मिल गई है। अभी तो जरा सा प्रकाश हुआ है, अभी तो थोड़ा सा सूरज उगते हुए ऊपर उठते हुए दिखा है, अभी तो सारा रास्ता तय करना है उसको, तब उसके बाद मंजिल मिलेगी। कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में ही बादलों से घिर जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में ही हम बैठ जाएं, कि अब चलो जाग तो गए हैं पहुंच जाएंगे, ऐसी भी क्या जल्दी है, पहुँचना ही तो है, पहुँच जाएंगे। अब जाग तो गए हैं, रास्ते पर लग गए हैं, तो ऐसे जरा मन को समझा बुझा करके चलना, मन की एक एक परत को खोलते हुए चलना, वरना मन किसी भी क्षण हमें धोखा दे जाएगा। और आज अपने मन के इस धोखे को समझने का ही दिन, आज मन की एक एक तह कि हम कैसे हैं, हम क्या हैं, अगर कभी अपने सामने आईना रख सको तो आज अपने सामने आईना रखने का दिन है। आज अपने सामने आईना रखने का दिन है। आज जब हम जाग गए हैं, जब हमको श्रद्धा का आईना मिल गया है, तो अब जरा ध्यान रखना कि श्रद्धा के आईने पर किसी भी क्षण धूल जम सकती है, हम खुद धूल जमा सकते हैं, हमारा मन उस पर धूल फेंक सकता है, क्योंकि दर्पण में अपने आप को एक बार देखने के बाद अगर कोई गंदगी दिखती तो आदमी बर्दाश्त नहीं करता। और जिस क्षण जागते हैं, किसी ने कहा है, जब से करीब हो के चले हम जिंदगी के, जब से करीब हो के चले जिंदगी के हम, खुद अपने आईने में लगे अजनबी से हम। जब से मैंने जागना शुरू किया, जब से मैं जिंदगी के करीब आना मैंने शुरू किया है, जब से मैंने अपने हाथ में आईना लेकर के देखना शुरू किया है, मैं तो अपने आईने में बड़ा अजनबी हो गया हूं। कभी देखना एक आदत बन जाती, जैसा मैंने कहा, दूसरे दुनिया के लोगों को धोखा देते देते हम कितने धोखे में पड़ जाते हैं, आज ये बात हमें समझ लेनी है। एक आदमी सारी जिंदगी नाना प्रकार के मुखौटे लगा करके जीता रहे तो अपना ओरिजिनल चेहरा क्या है शायद भूलने में देर नहीं लगती, और फिर तो हमें कारागृह जेल ही घर लगने लगता है, फिर तो अपना जो नकली चेहरा है, जो कपट भरा चेहरा है, वही हमें वास्तविक लगने लगता है। हमारे साथ मुश्किल यही है, आज तो हमें रूबरू अपने को अपने सामने आईना रख कर के देखने का दिन है। हम कोशिश करें इस बात को समझने की कि कहां पर कौन सी माया ने हमें घेर लिया, कहां कौन से कपट ने हमें घेर लिया है, कहां हमने कौन सा मुखाटा लगा लिया है। आज तो अपनी माया को समेटने का दिन, माया को समेटने का दिन। आप कहेंगे होती क्या है माया, कई अर्थ होते माया के, ये भी माया, इतने में समझ में आ जाती माया, ये भी माया है। और माया का एक अर्थ वो भी है कि जो नहीं है उसके होने का धोखा हो जाए, ये भी माया है। जो जैसा है उससे उल्टा ही कुछ दिखने लगे, वो भी माया है। और माया तो एक तरह की भ्रांति और धोखा भी है, एक तरह का छल और कपट भी है। माया के ये सारे अर्थ है। माया कषाय है, कषाय की तासीर मालूम नहीं मालूम। हमने कहा था कि क्रोध की तासीर मालूम, वो तो जब आता है तब हम नहीं रहते, जब हम रहते तो वो आते ही नहीं। अब जब हम रहे तो मालूम पड़े कि कैसा था, मेहमान घर में आया था, हम तो थे ही नहीं, उसको बुला के हम बाहर चले गए थे। जब वो आया तो हम पहचान ही नहीं पाए कि कौन आया, ये जरूर था कि आया। और जब जब हम वापस जब तक लौटे तब तक वो जा चुका था। कसाई की तासीर बिल्कुल ऐसी ही है, हमें कसती है कसाई, इसी लिए वो कसाई कहलाता, हमें कस लेती, जकड़ लेती अपने पंजे में, शिकंजे में हमें जकड़ लेती है। हमारा सारा तत्व उस समय पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, इतनी ताकत उसके अंदर है। और दूसरे को परेशानी उस कसाई से हो या ना हो, लेकिन जितनी तकलीफ अपने को होती है शायद वो हमें ही जानते हैं। और हम ये सोचते हैं कि हम कसाई करके दूसरे को तकलीफ में डाल रहे हैं, ऐसे किसी धोखे में मत रहना। आग खुद जलती है, दूसरा जले या ना जले, बिल्कुल आग के माफिक है ये कसाई। एक बड़ा छोटा सा उदाहरण है, एक आदमी जाया करता था रास्ते से रोज नहाने के लिए, और एक घर में से उसके ऊपर रोज कोई आदमी थूकता, थूक देता था उसके ऊपर। भला बेचारा आदमी, भले ही आदमी था इसलिए पहुंच लेता था और निकल जाता था आगे। रोज का ये रूटीन कहना चाहिए, डेली रूटीन, जैसे पेस्ट करते हैं अर्ली मॉर्निंग में उठ करके और हाथ वहीं पर जाता और हम शुरू कर देते, वैसे ही उसका रूटीन था कि वो वहां से निकलता था और वहां से कोई उस जिस घर के सामने से गुजरता था उसमें से कोई उसको थूकता था और रोज वो पहुंच के आगे बढ़ जाता। नीचे कहीं आसपास एक दुकानदार रहता था, आज घड़ी नहीं रहता, दुकानदार रहता था। तो एक दिन उसने उस भले आदमी को बुलाया, बोले भैया एक बात बताओ, आखिर बात क्या है, तुम जब जब निकलते हो तब तब ऊपर से कोई थूकता है। बोले ये तो भैया तुम उसी से पूछना, मैं क्या जानू, परेशानी मेरी थोड़ी है, मैं थोड़ी परेशान हूं, मैं तो जरा सा मुझे पहुंच लेना पड़ता है। परेशान तो वो आदमी है बेचारा, टाइम मिलाता होगा, मैं कब निकलूंगा, बेचारा टाइम मिलाता होगा कि मैं कब निकलूंगा, कितनी बेसब्री से मेरा इंतजार करता होगा, कितना भला आदमी, परेशानी तो उसकी है। और फिर बाद में भीतर ही भीतर थूक इकट्ठा करता होगा, निशाना बांधता होगा, वहीं जाकर के गिरना चाहिए ना, इतनी परेशानी उसको, मेरे को क्या परेशानी है, मुझे तो जरा सा पहुंच लेना है। बस ऐसे ही कसाई होती है, दूसरे को तकलीफ हो या ना हो, लेकिन जितनी तकलीफ कसाई करने वाले को होती है शायद उतनी तकलीफ किसी और को नहीं। हम कसाई की तासीर समझ लें, इस माया कसाई की भी तासीर ऐसी ही है जो कि हमें धोखे में डालती है, नाना तरह के षड्यंत्र रचने को प्रेरित करती, छल और कपट करने के लिए प्रेरित करती है। ज्यादा क्या कहें, दूसरे को नहीं अपने को धोखे में डाले रहती, ये माया कसाई हमें अपने आप को धोखे में डाले रहती है। इसलिए ऐसी इस माया कसाई को बहुत गौर से ये हमको धोखा ना दे सके, इस बात का हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए। जैसे ही अब कैसे मालूम पड़ेगा कि हम धोखे में हैं, तो जरा सा टटोल के देख लेना कैसे कैसे आती है ये माया, कब कब आकर के खड़ी हो जाती है और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम मायाचारी कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि नहीं, हम तो बड़ी ईमानदारी का काम कर रहे हैं, लेकिन बेईमानी कब उतर आई है मालूम भी नहीं पड़ता है। एक भला आदमी था, वो अपने मित्र को जो है सिनेमा दिखाने ले गया, कभी नहीं ले गया सिनेमा, लेकिन एग्जामिनेशन के टाइम पर सिनेमा दिखाने ले गया। क्या वजह थी भैया? वो बेचारा पढ़नता ज्यादा है जी, भाई साहब पढ़ के नहीं जानते, तो इन्होंने कही कि अब अधिकारी नंबर उनसे हमसे मिल जाए, नहीं तो चलो सिनेमा देखा लिया, तो ये भी गए हम भी, तो बड़ा मजा रहेगा। इस तरह से तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंदिर आकर के इसलिए बैठ रहे हो कि मोड़ी की शादी अच्छी जगह हो जाए, कि धर्मात्मा आदमी है जी इनके कर लो। पता नहीं हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी मायाचारी हम कर सकते हैं। ज्ञान का अहंकार होना तो फिर भी एक बार वाजिब है, हो सकता है, लेकिन अज्ञानता को ज्ञान सिद्ध करने की मायाचारी उससे भी ज्यादा भयंकर है। मान सम्मान के लिए हम कितनी मायाचारी कर सकते हैं, ये शायद हमारे मन से ज्यादा कोई। हम किस किस जगह मायाचारी कर सकते हैं, जरा सा लोग किसी एक कार सामने से निकली और हमको होनी चाहिए, और फिर उसके बाद हमारे अंदर एक जाल बुनना हम शुरू कर देते हैं कि किस किस तरह से करूंगा, कहां कहां फ्रॉड करूंगा और कैसे ये गाड़ी मुझे मिल जाएगी। जरा सा लोभ माया में धकेल देता है, जरा सा मान सम्मान की भावना हमें माया में धकेल देती है। कहते हैं कि क्रोध करना फिर भी थोड़ा ठीक है, ठीक तो कुछ भी नहीं है, कसाय कौन सी ठीक है भैया, लेकिन क्रोध से ज्यादा खतरनाक मान है, मान से ज्यादा खतरनाक माया है, माया से ज्यादा खतरनाक लोभ है। जाता सबसे आखिरी में लोभ है, दसवें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ बचा रहता है, और उसी लोभ से ये सारी कषायें शुरू होती है, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है। तो माया कैसे शुरू होती है, तो लोभ से शुरू होती है। जरा संभल के रहना, चाहे मान सम्मान का लोभ हो, चाहे वो घर गृहस्थी की माया का लोभ हो, इस पैसे का लोभ हो, ये सब हमें माया में धकेल देते। तो माया में कोई धकेले, इससे पहले हम इन सब चीजों को समझ लें। हम एक आईना अपने सामने, मैंने कहा था कि रखने की बात है, वो आईना हम अपने सामने, आईना अपने सामने रख लें, अपना सामना खुद करना शुरू कर दें, तो शायद माया समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अब उपाय समझना है कि माया को समझने का क्या उपाय, ये तो समझ लिया कैसे आती है, लेकिन अब किस तरह से होती ये भी हमने समझ लिया है, लेकिन ये जानना है कि कैसे पहचानेंगे कि हम मायाचारी में पड़ गए हैं। तो अब अपना आईना सामने रख लेना, हमें मालूम है इसके लिए वो क्या सजा देंगे, हमें मालूम है इसके लिए वो क्या सजा देंगे, मगर जैसे भी हो हम आज उन्हें आईना दिखाई देंगे। अब कुछ भी हो मेरे अंदर, जो होगा जैसा होगा, देखो दूसरे को आईना दिखाने की बात नहीं, दूसरे को तो आईना दिखाने वाले बहुत सारे हैं। आज तो बात अपने आप को आईने में देखने की, तो आज अपने आप से कह रहा हूं, हम सब अपने आप से कह रहे हैं कि आज तो अपने आप को आईना दिखाई दूंगा, जो होना होगा तो देखा जाएगा, जो सजा मिलनी होगी तो मिल जाएगी, अपने आप को तो आज आईना दिखाई। और आईना दिखाना और देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा संस्कार, हमने कहा था कि हमको बहुत परेशान करता है, हमको कहता है कि मत देखो क्या रखा है उसमें। हमने बहुत सारी तरकीबें ढूंढ ली हमको आईना ना देखना पड़े, इसकी भी तरकीबें हैं, कहीं ऐसा ना हो। एक जरा सा प्रयोग आपको बताता हूँ, जरा सा प्रयोग करके देखना, एक 10 मिनट का प्रयोग, एक कागज और कलम ले लें। मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, आप ये मत समझना कि आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ मैं डायरेक्शन क्या दूंगा, आप अपने आप दे लेना। एक कागज कलम ले लेना और किसी अकेले कोने में, मैं हमेशा क्या करता हूँ कि किसी अकेले कोने में जाकर के अपनी छाती पे हाथ रख के देखना कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं जो किया कहा माना उसने क्या बुराई, कभी अपनी बुराई भलाई जो करते हो जो कहते हो जो मानते हो उस सब में क्या भला और क्या बुरा ये कौन बताएगा? आपाधापी में तो जीवन ऐसे ही बीतता चला जाएगा, तो 10 मिनट का एक प्रयोग करना कि एक कोने में बैठ करके कागज कलम लेकर के जो जो मन में डोले वो सब कागज पे लिख लें, और कागज पर लिख करके फिर पढ़ना, तो बड़ी बेचैनी होगी, बड़ी घबराहट होगी कि मेरे अंदर इस 10 मिनट के दौरान कौन कौन से पागलपन की बातें चल रही थी। जरा ध्यान रखना, ईमानदारी से लिखना, वरना हम बेईमानी को भी हम बेईमानी से लिखते हैं, बड़ा मुश्किल है। बेईमानी देखने के लिए बेईमानी मत कर लेना, अपने अंदर की बेईमानी देखने के लिए, अरे ईमानदारी देखने के लिए तो दुनिया बेईमानी करती, अपनी ईमानदारी देखने के लिए हम ईमानदार हैं, दूसरे की ईमानदारी देखने के लिए हम बहुत बेईमान हैं, देख ही नहीं पाते। दूसरे की ईमानदारी देखने के लिए जितने बेईमान हैं हम, शायद उतने ही बेईमान अपनी बेईमानी देखने के लिए भी हैं। तो भैया ऐसा मत करना, बहुत ईमानदारी के साथ 10 मिनट का प्रयोग करके देखना और लिख करके देखना कि कौन कौन से भाव हैं, तो सारा पागलपन अपने अंदर का मालूम पड़ जाएगा कि हम कितने पागल हैं और हमें क्या हमारे अंदर भरा पड़ा हुआ है, हम किसके बारे में, हमारी सांसें क्या क्या सोच लेती हैं, बिल्कुल कोई मकसद नहीं था, कोई मतलब नहीं था, जिसका कोई सेंस नहीं था, उन चीज़ों को हमारे अंदर अनकॉन्शियस में, हमारे अवचेतन मन में वो क्या क्या चीज़ें डोलती रहती हैं। हम तो ऊपर ऊपर कहीं कुछ और रहते हैं, भीतर भीतर कुछ और बने रहते हैं। आज तो दिन बाहर और भीतर सबको बहुत अच्छी तरह से हाथ डाल के टटोल लेने का दिन है कि भीतर क्या डोला और बाहर कैसा। आज तो इस चीज को बहुत गौर से देखने का है, ढकने की कोशिश मत करना, छिपाने की कोशिश मत करना। लोगों ने तो आईना तक तोड़ने की कोशिश करी। आप कहेंगे आईना तोड़ने की कोशिश? जी हाँ, आईना तोड़ने की कोशिश। कौन सा है वो आईना? एक ही तो आईना है, अपने पास एक ही आईना है, वो आईना है परमात्मा का, वो है मंदिर और मूर्ति का आईना। हमारे पास और कोई आईना नहीं है जहाँ कि हम हूबहू अपने आप को देख सके। हमने तो आज मूर्ति और मंदिर की भी जरूरत नहीं समझी है। क्यों? मंदिर और मूर्ति में जाएंगे तो अपने आईने से सामना हो जाएगा ना, अपनी कुरूपता दिखाई पड़ने लगी कि किसी गुरु के चरण में जाकर के बैठ जाएंगे तो वो जैसा है बाहर भीतर एकदम नग्न, वैसे ही नग्न होना पड़ेगा ना, तो जरा घबराहट होती, अपने आप को बिल्कुल खोल देने में जरा दिक्कत होती है। तो हमने कहा कि खोलेंगे ही नहीं हम, तुम क्या कर लोगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, हम तो आईने ही फोड़ देते हैं। तो हम तो आज आईना फोड़ने पर भी तैयार हो गए हैं। हमने मूर्ति मंदिर को जिस तरह से नकारने की कोशिश करी है, तो ध्यान रखना कि फिर अपनी जिंदगी में अपने अंदर जो चीज भरी है वो कभी नहीं देख पाओगे। सिर्फ पंच परमेश्वर की ही ऐसी जगहें हैं जहाँ कि हम अपने अंदर का सब कुछ बाहर निकाल सकते हैं। मेरे पास एक सप्त व्यसन करने वाला जबलपुर में आदमी आया था, और लोग, मुझे मालूम नहीं था कि वो व्यक्ति कौन है कैसा है, लेकिन मेरे से आधा घंटे तक बात करता रहा। लोग चारों तरफ खड़े हुए देखते रहे कि महाराज जी जिस चाय से बात कर लेते हैं सप्त व्यसनी इनके पास बैठा हुआ। मेरे कान में आके धीरे से बोलता, कहने महाराज व्यसनी है? हमने कहा व्यसन करता है, इतनी ही बात है ना, व्यसन बुरा है कि आदमी बुरा है? मुझे आदमी से बात कर रहा हूँ, अभी व्यसन से थोड़ी बात कर रहा हूँ, आदमी से बात कर लेने दो मुझे। और जब वो आदमी जाने लगा तब मैंने सिर्फ इतना ही उससे कहा कि औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे भी कहा होता, कुछ हमसे भी सुना होता, और मैं अपनी सामायिक में बैठ के आपको बिल्कुल सच्ची घटना कह रहा हूँ। और मुझे मालूम है कि एक घंटे तक मैं सामायिक करता रहा और वो आदमी दीवार से टिका टिका रोता रहा कि औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे भी तो कहा होता, कुछ हमसे भी तो कहा। और एक घंटे के बाद अपने आप आकर के कन्फेशन, जिसको बोलते हैं प्रायश्चित, मैं बहुत बड़ा व्यसनी हूँ महाराज, आपसे क्या छुपाऊं, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि एक जैन होने के नाते कम से कम व्यसन छोड़ दूं, आज संकल्प करता हूँ के सामने। तो ये परमात्मा का मंदिर, ये मूर्तियां हमारे लिए आईना है भाई, ये आईना मत तोड़ना, और आईने से बचने की कोशिश मत करना। आईना से बच करके हम क्या करते हैं, नए नए घर बनाते हैं, चलो एक दूसरा घर बनाएं, क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि अपने से सामना हो जाए, इसलिए तो दूसरा घर बनाना है। जरा दुकान से घबराए तो बाजार में चले गए, जरा घर से घबराए तो दुकान में चले गए। अकेला आदमी जरा जहाँ छूटता है और घबराहट होना शुरू होती, क्योंकि अकेले आदमी का अपने से सामना होना शुरू कर हो जाता है, और हम अपने से सामना नहीं करना चाहते, इसलिए हम अपने आप को एंगेज रखते हैं। हम टेलीविज़न में अपने आप को एंगेज रखते हैं, हम रेडियो में अपने आप को एंगेज रखते हैं, हम कपड़ों में अपने आप को एंगेज रखते हैं, हम कपड़े पहन लेते हैं। ज़रा देखो कि इन कपड़ों में हम कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। अपने लिए तुम जैसे लगो उसकी तुम्हें कहाँ चिंता है, तुम्हें तो सबको यही चिंता है कि दूसरे के लिए ये कपड़े पहन के हम कैसे लग रहे हैं। भले ही हम कैसे रहे हैं भीतरे, मगर दूसरे को अच्छे लगत रहे, इतने ही तो हमारी कोशिश है, और कोई कोशिश नहीं है। इसके अलावा कोई कोशिश है क्या? हमारी कोशिश तो सिर्फ इतनी सी है कि अच्छे हम ऊपर से लगते रहें। आज तो इसका बिल्कुल भी दिन नहीं है, आज तो इसका दिन है कि जैसे हैं वैसे हम बाहर दिखने लगें। आज तो इस बात का दिन है, तो आज आईना अपने हाथ में ले लीजिएगा। चार कमरे हमारे घर के हैं, मुख्य मुख्य कमरे, तो चार कमरे हमारी जिंदगी के हैं। चारों कमरों को जरा टटोड़ के देख लीजिएगा कि कौन से कमरे में हम किस किस को जाने देते हैं, कौन से कमरे में हम खुद जाते हैं और खुद नहीं पहुंचते हैं। कोई ऐसा भी कमरा है जहां हम जाने नहीं चाहते? देख लेना घर गृहस्थी का। मैंने तो घर गृहस्थी के कमरे देखे ही भर हैं भैया, आपके पास तो बहुत है, तो आप बहुत गौर से देख लेना। पहला वाला कमरा हमारा बैठक रूम है? रूम बोल रहा हूँ, बैठक के साथ में बड़ा मजा है। हम लोग हिंदी और इंग्लिश वाले लोग हैं ना, अंग्रेजियत फिर भी है, अंग्रेजी चली गई भले ही है? यही हमारी अंग्रेजियत है, बड़ा मजा आता है कई बार। बैठक खाना, बैठक खाना क्या है? जहां हमने जितने पदक मिले हैं वे सब लटका के रखे है ना, जहां हमें जितने प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र, जितनी घर की अच्छे से अच्छी 100 पीस हैं, वो सब हमने उसमें लगा के रखी हैं। और आप आइए साहब, यहीं बैठिए, इससे भीतर नहीं, जरा गौर करिए इस बात पे, बस यहीं पर देखिए। ये जब उस समय मिला था जब मैं वहां गया था पूना में, और मैंने एक कविता पढ़ी थी, तब मुझे ये प्रशस्ति पत्र लोगों ने बड़ा पसंद किया था। अच्छा, आपको बहुत पसंद किया, बड़ा मजा आता है अपने इस आदर्श को दिखाने में। ये आदर्श वाला कमरा है, पहला वाला कमरा, जहां हम सबको ले जाते हैं, जहां हम खुद थोड़ी देर बैठते, जहां हम सबको दिखाते हैं, जहां हम लेकिन थोड़ी देर बैठते हैं। ये हमारा आदर्श का कमरा है। इस कमरे को देख लिया, सबको दिखा लिया, अब इसके आगे वाला कमरा तो जरा और मुश्किल का। ये किचन है, रसोई का घर है। किचन से क्या मतलब? हाँ, किचन से बहुत बड़ा मतलब है। आदमी बाहर से गरीब रहा है, भीतर अंदर रसोई बहुत अच्छी पक सकती। बाहर से आदमी बहुत अमीर रहा है, भीतर रूखी सूखी खा सकता। मालूम पड़ता है अंदर की कैसा है आदमी। चौके से आदमी का व्यक्तित्व तो मालूम पड़ता है, आप बड़े असमंजस में पड़ जाएंगे। हाँ, स्टाइल इज द मैन एंड मैन इज द स्टाइल। आदमी क्या खाता है इससे मालूम पड़ता है कि आदमी कैसा है। इतना तो ठीक है, लेकिन आदमी किस तरह खाता है इससे भी मालूम पड़ता कि आदमी कैसा। एक लौकी की सब्जी, मुझे डॉक्टर नेमीचंद ने ये उदाहरण सुनाया था कि बड़ा प्रयोग करते हैं वो, उनने प्रयोग किया इंदौर में। बोले मैंने एक लौकी की सब्जी, चौके के बारे में जानकारी देना थी आपको, बता रहा हूँ कि चौके से कैसा व्यक्तित्व होता। एक लौकी की सब्जी चार भाग कर दी, 1 किलो की थी, पाव पाव भर सब्जी चार चौकों में बांट दी। मसाला मन का पसंद का जो था वो बांट दिया, बर्तन भाड़े सब दे दिए, सब कुछ कर दिया। इसके बाद जब चार जगह से पक करके लौकी आई तो चारों का टेस्ट अलग। क्या बात हो गई, एक ही लौकी थी लेकिन चार चौके से आई है, चारों तरह की अब हो गई वो। क्या बात हो गई, ये चौके का अपना व्यक्तित्व है। जैसा हमारी भावनाएं होंगी, जैसा हमारा जीने का तरीका होगा, वैसा हमारा भोजन पकाने का तरीका होगा, खाने पीने का तरीका होगा, किस तरह से हम भोजन बनाते हैं इस पर भी हमारा डिपेंड करता। तो ऐसे ही हमारे जीवन का एक बहुत भीतर का कमरा है, इस बाहर के कमरे से हमें मालूम पड़ जाता है कि हम कैसे हैं, तो जरा भीतर हम किसको ले जाएंगे जो बहुत परिचित होंगे। बाहर के कमरे में तो सबको बिठा लिया, थोड़े परिचित हमारे घर कुटुंब के, चलो भैया जरा चौके में से खाना खा लेना, नहीं तो हमारी हालत तुम्हें मालूम पड़ जाए अगर चौका में चले गए तो। बाहर तो बहुत सजा के रखो है, भीतर मगर रूखो ही सूखो है। अब तो चौके में खाना खिलाने की आदत भी हम भूल गए हैं, अब तो बाहर ही उसी रूम में जहाँ की बैठक रूम है उसी में हमने एक डाइनिंग टेबल डाल ली है और वहीं पर सजा करके लाते हैं और वहीं पर आदमी को खिलाते हैं ताकि मालूम ना पड़ जाए कि किस तरह से हम रह रहे हैं। ये दूसरा कमरा है चौका, दूसरा कमरा, तीसरे नंबर का कमरा है बेडरूम, अंग्रेजी में कहते, उर्दू में कहते हैं बड़ा अच्छा शब्द है ख्वाबगाह। मैं बड़ा सोचता रहा, मैंने कहा ये तो बड़ा मजे का शब्द है ख्वाबगाह, जहां हम सपने देखते हैं वो कमरा है, यहां कोई नहीं जा सकता, यहां तो क्या बाजू वाले से पूछते कि कहां डाल दें? नहीं पूछते भैया, वो तो छूट जाती है। गरम एक बार अनुभव में आ जाए कि ये तो गरम है, एक बार दिख जाए ये जिंदगी में गलत है, इसके बाद भी नहीं छूटता है, तो समझना अभी गलत को गलत नहीं माना है। अभी आग महसूस नहीं हुई है कि वाकई कहीं घर में कोई आग लगी है, अगर ये मालूम पड़ जाता कि घर में कहीं भीतर चौथे कमरे में बहुत बहुत आग लगी हुई है, तो हम चौथे कमरे की या तो आग बुझा देते या कि चौथे कमरे से बाहर भाग जाते। हम सब कुछ छोड़ देते, सारी विकृतियों को छोड़ के हम अलग हो जाते या सारी विकृतियों को हम हटा देते। काश इतनी कोशिश हम अपनी जिंदगी में कर सकें। बात मायाचारी की तो लगभग पूरी हो गई, मायाचारी की बात पूरी हो गई और मुश्किल हो गई इस सेंटेंस के साथ ही। ये सब मतलब मायाचारी की बात थी जो पूरी हो गई ना, मायाचारी की बात तो कभी नहीं पूरी। लेकिन ये जो है बात, वो मायाचारी की बात नहीं है। हम जो जो जिंदगी में कर रहे हैं वो सब मायाचारी का हो सकता है। आज तो हमने अपनी मायाचारी को जान लिया है। ध्यान रखना, आज सरल होने का, आज रिजु होने का, आज ईमानदार होने का, आज निश्चल होने का, आज निष्कपट होने का दिन। 1%, 0.1%, 0.01% जितना भी हो सके, डेसिमल, मैं कहता हूं 1000 डेसिमल तक, इतनी सी भी अगर सरलता आ जाए, इतनी सी भी अगर निष्कपटता आ जाए, जरा सा कपट छूट जाए, तो क्षण देखना श्रद्धा का दीपक, विश्वास का दीपक जलना शुरू हो जाएगा। बिना निष्कपट हुए विश्वास होना बहुत मुश्किल है। कपटी आदमी का विश्वास शायद जिंदगी में कोई नहीं करता। जिस क्षण हमारे अंदर ये मायाचारी आ जाती है, हमारा आपस का विश्वास टूट जाता है। जिस क्षण ये मायाचारी आ जाती है, उस क्षण हम भगवान से दूर हो जाते हैं। बस दो ही बातें और समझनी की हैं कि सरलता से भगवान मिलता है और कपट छुपाए नहीं छुपता, मालूम पड़ जाता है। दो किस्से हैं और बात खत्म। क्या हुआ, एक बुढ़िया जाती थी रास्ते से, गठरी उसके सिर पर थी। सब कहानियां मेरी सुनी हुई हैं आपकी, आपको नहीं आया ध्यान। एक बुढ़िया जाती थी रास्ते से उसके सिर पर, अभी ध्यान आ जाएगा। एक बुढ़िया जाती थी रास्ते से उसके सिर पर गठरी थी, गठरी का वजन ज्यादा था, बुढ़िया बूढ़ी थी। सीधी सीधी कहानी है, बच्चों को भी समझ में आती है। तो धीरे धीरे चली जा रही थी, पीछे से एक ऊंट वाला आया। ऊंट वाला आया, बुढ़िया ने देखा कि ऊंट वाला है। उसने कहा, ऊंट वाले थोड़ा रुको, मेरा वजन बहुत भारी है, तुम अपने ऊंट पर रख लो, आगे जा करके उतार देना। ऊंट वाले ने कहा कि हमको टाइम नहीं, हम नहीं रखते, आप पटेरिया तक आते हैं और कोई थोड़ा सा कहे कि भैया हमारा वजन जरा ज्यादा है, वैसे तो पटेरिया वजन लेके नहीं आया जाता, बड़ी मुश्किल, आप पकड़ लेंगे मुझे। लेकिन वजन दो तरह का होता, एक मन का और एक शरीर के ऊपर टंगा हुआ। मन का वजन बांट सको तो बाजू वाले से बांट लेना, बेवजन होकर के आना पटेरिया में। मन का भी वजन होता है, दुखी मन हो तो बांट दिया जा सकता है मन का वजन। और कोई बोझा लेकर के आ रहे हो, कई लोग आ सकते तो मेरे से चौके के लिए आते, चलो बात तो समझ में आ गई, चौके के लिए वजन लेके आ सकते हैं। तो उस समय अगर कोई कहे कि भैया हमारा ले लो, तो शायद हम भी यही जवाब देंगे कि फुर्सत नहीं है, जल्दी में है हम। अपनों जब समर्थ नहीं है तो एक तो काय को लेके चले। हमारे मन के साथ कब क्या गुजरती है हम कह नहीं सकते। हम तो आज कल हम जब इस बारे में सोच रहे थे तो हमको खुद कभी कभी रोना आ रहा था और कभी कभी अपने ऊपर हंसी आ रही थी। जैसे आज हम हंस ले रहे हैं, अपने कपट पर हम हंस रहे हैं, अपनी सरलता पर तो हमें कभी ख्याल भी नहीं आता। अपने कपट पर हम हंस लेते हैं कि हम धर्म करने जा रहे हैं और हमारे मन में क्या क्या है, जरा दूसरे की मदद का भी विचार नहीं है कि दूसरा भी हमारी तरह है। तब तो धर्म शुरू नहीं हुआ। दूसरा जब तक मुझे अपनी तरह न दिखने लगे तब तक अहिंसा शुरू नहीं होती। कभी बात करूंगा इस पर, अभी तो बुढ़िया की बात अटक गई बीच में। बुढ़िया ने कहा कि भैया घटरी रख ले, फुर्सत नहीं है, जरा आगे बढ़ा ऊंट वाला। ऊंट वाले के मन में थोड़ा सा कुछ जागृत हुआ, थोड़ा सा जागृत हुआ, थोड़ी सी माया का चक्कर आया और गाफिलता आनी शुरू हुई। सोचा कि अकेली बुढ़िया, पता नहीं क्या क्या गठरी में हो, और अपन रख लें और आगे निकल जाएं, ना रुकें, कौन देखने वाला है, अपना हो जाएगा। बस जरा सा विचार आया, वापिस लौटा, दे दे बुढ़िया, दे दे, बहुत वजनदार होगा ना तेरा। तू अभी कह रही थी कि मुझ गठरी दे दे, दे दे। बुढ़िया कहती कि भैया बस थोड़ी दूर और रह गया, अब तो मैं ही ले जाऊंगी। अरे बुढ़िया बहुत वजनदार है, दे दे, तेरे से किसने क्या कह दिया? बोली बेटे तेरे से जो कह गया वो ही मेरे से भी कह गया। तेरे से जो उतनी दूर जाके कह गया ना वो ही मेरे से भी कह गया कि क्या पता, अब भरोसा नहीं, अब भरोसा नहीं रहा। बस जिस क्षण हमारे अंदर ये मत सोचना कि मैं किसी को छुपा करके मायाचारी कर रहा हूँ, आपकी मायाचारी आपके विचारों में आई हुई कपटता दूसरे से छुपी नहीं रहती। आज के संबंध मैं सोचता हूँ कि सारे संबंध धोखे के संबंध हैं, हम एक दूसरे को धोखा दिए चले जा रहे हैं और संबंध इसी वजह से टूटते चले जा रहे हैं, या फिर जुड़े हुए भी हुए भी हैं तो बामुश्किल जुड़े हुए हैं हमारे संबंध। आपका समय हो गया, लेकिन एक किस्सा तो और सुनाऊंगा फिर जाने दूंगा। कभी कभी तो करता हूँ मैं ऐसा, नहीं तो नहीं करता। आज कर लेने दीजिएगा, वो कहानी बहुत अच्छी है। भगवान मिलता है सरलता से, कपटता से सब छूट गया। अभी तो इतनी सी बात करी है, लेकिन अभी तो भगवान को भी पा लेना है आज, नहीं तो आप कहते कहते जाएंगे कि सब कपट कपट की बात करी थी। कुछ सरलता की भी बात कर लें। सरलता और निश्चलता कैसी होती है? बिल्कुल बच्चे की तरह होती है। जहां हम बिल्कुल खुले होते हैं, जिसके सामने हम बिल्कुल खुले होते हैं, वो हमारा मित्र होता है। मित्र की मैं परिभाषा यही बनाता हूँ कि वो मेरा मित्र है जिसके सामने जाकर के मुझे कोई छुपाना नहीं पड़ता कोई बात। तो मित्र बनाना सीख लेना, सरलता लाने के लिए मित्रता सीखनी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा मित्र हमारा अपना परमात्मा, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। दूसरा मित्र है गुरु, कल्याण मित्र है। राजवार्तिक में कहते हैं कि कल्याण मित्र बना लेना किसी को, गुरु ही वो कल्याण मित्र हो सकता है जो कि कभी भटकोगे, कभी विकृत होगा मन तो जिसके सामने जाके निवेदन कर देना कि आपसे क्या छिपाना, आपके पास तो मेरा कल्याण ही होने वाला है, आपसे सब कहे देता हूँ। लेकिन आज तो मुश्किल ये है कि सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य मिल जाने के बाद भी उनके सामने भी हम इतनी चालबाजियाँ खेलते हैं कि कभी कभी शर्म आती, हमें अपने मन पर आनी चाहिए कि हम क्या क्या फ्रॉड, क्या क्या धोखे में हम अपने आप को रखते हैं। दूसरे को धोखा मैं पहले ही कहा जा चुका कि नहीं दिया जा सकता, लेकिन हम मंदिर में भी जाने किन किन विचारों से जाते हैं, अपने गुरुओं के पास भी किन किन विचारों से पहुंच जाते हैं, ये आज हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ समझ लेना है, सोच लेना है। वरना हमें ना गुरु मिलेगा ना हमें कोई भगवान मिलेगा। सरलता निश्चलता बिल्कुल बच्चे के जैसी होनी चाहिए। एक बच्चा था छोटा सा, और पापा जी घर में थे, कोई पापा जी को बुलाने के लिए आया था। कैसी निश्चलता होती है बच्चे की, मैं ये कह रहा हूँ। बुलाने के लिए आया था पापा जी के, तो अंदर जाके पापा को खबर दी कि पापा जी कोई आपको बुला रहे हैं। तो पापा जी को तो मिलना नहीं था उनसे, बोले सुनो कह दो कि है नहीं पापा जी घर में। बच्चा क्या समझे मायाचारी कि आप मिलना नहीं चाह रहे इसलिए ऐसा कहलवा रहे। तो वो बेचारा बाहर गया, किन्ने पापा जी कह रहे हैं कि कह दो पापा जी हैं नहीं। क्या हम कभी सोचना, हम कह देंगे एक क्षण में कि वो बच्चा बहुत ना समझता, इतना भी नहीं समझता है कि पिताजी ने जैसा कहा वैसा ना कहे। हमें तो बेईमानी, ईमानदारी तो हमें ना समझी लगती है, बेईमानी हमें बहुत अच्छी लगती है। हम जितना फ्रॉड कर सकें, हम जिस चालबाजी से दूसरे को अपने दायरे में फंसा सकें, हमें लगता हम उतने समझदार हो गए हैं। ये समझदारी आपके कोई काम की नहीं है। ये समझदारी कहाँ लेकर के जाओगे? ऐसी समझ क्या किस काम की कि दूसरे को बेईमान बनाने के लिए ये समझदारी कर रहे हो? दूसरा बेईमान बने या ना बने, लेकिन इस समझदारी से तो हम जरूर बेईमान होते जा रहे हैं। तो भैया ऐसी निश्चलता प्राप्त करना, निश्चलता प्राप्त होने से ही हमको भगवान मिलता है। एक कहानी की वायदा किया था तो आखिरी में भगवान मिलने की कहानी सुना देता हूँ, शायद ज़िंदगी में कभी वैसा हो जाए। एक छोटा सा लड़का था, एक ही लड़का था, उसके पिता नहीं थे, माँ ही पिता थी, और माँ ही माँ थी, अकेली माँ थी और लड़का चौथी पांचवी कक्षा पढ़ता हो, छोटा था। कहते हैं कहानी सच्ची है, वैसे कहानी सब झूठी, फिर भी कह लो कि कहानी सच्ची है। वो छोटा सा बेटा स्कूल जाया करता था, रास्ते में जंगल पड़ता, डर लगता था, जंगल में किसको डरने लगता, फिर तो छोटा सा लड़का था, डर लगता था। दो चार रोज स्कूल गया, बड़ा डर लगता था। एक रोज जिद कर बैठा सुबह सुबह कि माँ तुम भी चलो हमारे साथ, हम नहीं जाते अकेले, उनको बहुत डर लगता जंगल। माँ ने कहा बेटे ऐसे कैसे चलेगा, मैं तेरे साथ कैसे चल सकती हूँ, खाना बनाना है, घर का काम करना, इतने सारे काम है, तू डरता क्यों है, चला जा, वहां पर तेरा भैया है। अच्छा मेरा भैया है वहां पर, तू मैं तो अकेले ही हूँ यहाँ पर। नहीं वो जंगल में ही रहता तेरा भैया। अच्छा जंगल में रहता है, लड़के को क्या मालूम क्या गलत है क्या सही है, माँ पर भरोसा है, माँ पर भरोसा है ध्यान रखना, और अंदर कहीं सरलता है। दो ही चीजें जिंदगी में हो, अपने परमात्मा पर भरोसा और भीतर कहीं सरलता, तो परमात्मा से साक्षात्कार होने में देर नहीं लगती है। मैं ये बात बताना आपको चाह रहा हूँ, माँ के प्रति भरोसा था, मेरा भैया जंगल में है, हाँ तेरा भैया जंगल में है, तेरे को जब डर लगे तो आवाज लगा दिया करे। तो क्या नाम लेकर के आवाज लगाऊंगा, अच्छा तू अपना नाम बता, तेरा नाम क्या है, मेरा नाम तो अरहंत है। उस लड़के का नाम अरहंत, ऐसे नाम तो आपने अपने बेटे के नहीं रखे होंगे, डब्बू रखा होगा ज्यादा। अरहंत कौन रखता, किसको फुर्सत पड़ी हुई है, कैसा ये पुराना नाम है अरहंत, महावीर, शांतिनाथ, क्या नाम रखना, ये भी कोई नाम है, ये नाम तो पुराने लोगों के रखे रखा करते होंगे। लेकिन ध्यान रखना, अरहंत कहने से शायद किसी क्षण अरहंत का ख्याल आ जाए, महावीर कहने से शायद किसी क्षण भगवान महावीर की याद आ जाए, सोते जागते रात में अचानक महावीर, अपने बेटे को बुलाओ तो शायद याद आ जाए कि कोई तीर्थंकर भी महावीर के नाम का हुआ। इसलिए रखा जाता था उस लड़के का नाम अरहंत। तो माँ ने कहा बेटे तुम्हारे बड़े भैया का नाम भी अरहंत है, देखना बात बहुत गौर से सुनने, तुम्हारे बड़े भैया का नाम भी अरहंत है, जब डर लगे तो अरहंत कह करके पुकार लिया कर, डर से बचने का और कोई रास्ता नहीं है, अरहंत को ही पुकारना पड़ेगा। और ये तो माँ जानती थी, बच्चा तो यही जानता था कि बड़ा भैया का नाम है अरहंत। तो जंगल में गया, अब जंगल में गया तो डर तो लगा ही, अब जैसे ही डर लगा तो माँ ने कहा था कि बुला लेना, तो आवाज लगाई कि भैया आओ, अरहंत भैया आओ, हमको बहुत डर लगता। अब अरहंत भैया हो वहां तो आए, लेकिन थे वहां पर अरहंत। दो चार बार आवाज लगाई, दस बीस पच्चीस बार आवाज लगाई, हद होती है आखिर, वहीं पर पेड़ के नीचे बैठ गया कि भैया तुम नहीं आते, नहीं आते तो हमको तो बहुत डर लगता, और रोने लगा कि तुम आओ ना भैया, हमको डर लगता। और कहानी तो ये कहती है कि कहीं से आवाज आई कि चल बेटे, चल मेरे छोटे भैया, चल यहाँ कोई नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, उठ चल। अच्छा भैया है, हाँ ठीक है। आवाज आई थी वहां से, आवाज आई थी, आप विश्वास नहीं करेंगे, श्रद्धा की आंख होगी, कोई श्रद्धा का कान होगा तो आवाज सुन लेगा, कहीं भीतर से आवाज आती कि क्यों डरते हो, यहाँ तो मैं हूँ, अभी अरहंत हूँ मैं, भगवान यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, डर किस बात का। और वो बेहिचक स्कूल पहुँच गया, पाँच मिनट, दस मिनट, पंद्रह मिनट शायद देर हो गई, मास्टर साहब ने पूछा कि क्या हो गया था, बेटा तो निष्कपट था, जो जो घटना हुई थी सब बता दी। गुरुजी समझ गए कि इस बच्चे को भगवान का दर्शन हो गया है, इसके बुलाने से भगवान आ गया। तो गुरुजी के मन में भी बात जमी, बोले तुम अपने अरहंत भैया को हमें दिखाओगे, कहने हाँ क्यों नहीं दिखाएंगे, वो तो अभी चलो हम दिखाई देते हैं उसको, तो बड़ी खुशी हुई कि हमारा अरहंत भैया जंगल में रहता, हम दिखा देंगे, गुरुजी पूछ रहे हमारे अरहंत भैया को। लेकर के पहुंचा, आवाज दी कि आओ अरहंत भैया, हमारे गुरुजी तुमसे मिलने के लिए आए हैं। कई आवाजें दी, नहीं आते भैया, गुरुजी क्या कहेंगे, गुरुजी आए हैं, आप गौर से सुनना, सिर्फ आवाज आई कि गुरुजी को अभी देर, सिर्फ इतनी सी आवाज आई थी वहां से कि गुरुजी को अभी देर है, बस आप शायद नहीं समझे, अभी गुरुजी बच्चे की तरह नहीं हुए हैं, मैं तो बच्चा जो हो जाता है, जो सरल हो जाता है उसके पास आता हूँ, मैं वो भगवान हूँ जो सरलता के पास आता हूँ, सरलता के पास रहता हूँ, अभी गुरुजी को सरल होने में बहुत देर है, अभी गुरुजी का नंबर आया नहीं है। गुरुजी ने उस छोटे से बच्चे के ऊपर हाथ फेरा, बोले हाँ बेटे ठीक कहते हैं तुम्हारे भैया, अभी मुझे देर। ऐसे ही शायद हमारी जिंदगी में भी अभी देर हो सकती है। आज का दिन हमें इसके लिए मिला है कि हम और ज़्यादा देर ना करें, उस अनंत के आईने को अपने सामने रख करके अपनी सारी विकृतियों को देख लें और एक एक करके निकालते चले जाएं। जिस दिन हम सरल हो जाएंगे उस दिन हम भगवान हो जाएंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।
पन्नतम धम्मम शरणं पौवज्जामि।
धम्मं शरणं
पवज्जामि।
बोले आचार्य गुरु विद्या सागर मुनि महाराज।
जय जय जय।